पेज नंबर 37। विद्यालय में संगीत शिक्षण। 20वीं शताब्दी ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन प्रस्तुत किए हैं। स्वतंत्रता के साथ जहां हमें अपने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ, वहां भारतीय साहित्य, कला व संस्कृति भी उन्नति की ओर अग्रसर हुई। विज्ञान और कला के विभिन्न क्षेत्रों में आज हमने जो आत्मनिर्भरता पाई है, वह शिक्षा की ही देन है। संगीत जगत भी इससे अछूता नहीं रहा है। संगीत, जो पहले गिने चुने व्यक्तियों की अमानत था या समझा जाता था, आज वह समाज का अभिन्न अंग बन चुका है। यही नहीं, विदेशों में भी भारतीय संगीत का स्थान दिन प्रतिदिन ऊंचा होता जा रहा है। निसंदेह, आधुनिक युग ने संगीत के क्षेत्र में व्यापक नवीनता लाने का प्रयास किया है। आज हमें संगीत शिक्षा के नवीन उपक्रम, नूतन परीक्षा विधि, निर्धारित पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें तथा संगीत के प्रचार प्रसार एवं विकास की नूतन तकनीक के साधन सुलभ हैं। सामंतों के महलों, नवाबों की महफिलों, हवेलियों और मंदिरों की चार दीवारी से बाहर आकर संगीत ने जन सामान्य के आंगन को अपना क्रीड़ा स्थल बना लिया है। पेज नंबर 38। स्वर्गीय पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और आचार्य भातखंडे जी ने संगीत के प्रचार प्रसार के लिए सराहनीय कार्य किए हैं। ये दोनों ही संगीत की वर्तमान गरिमा और प्रतिष्ठा के अधिष्ठाता हैं। इन दोनों ने शास्त्रीय संगीत शिक्षा की सर्वजन सुलभता के लिए अथक प्रयास करके संगीत विद्यालयों और संगीत महाविद्यालयों तक की स्थापना की। इन दोनों ही मनीषियों की यह इच्छा थी कि शिक्षा ही संगीत के पुनरुद्धार एवं प्रचार प्रसार का सशक्त साधन है। अतः संगीत शिक्षा जन सामान्य के लिए सुलभ होनी चाहिए। इसके ही अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप संगीत एक विषय के रूप में आज विद्यालयी शिक्षा के रूप में स्वीकृत है। कई विश्वविद्यालयों में संगीत विषय विधिवत स्थापित है। पंडित पलुष्कर जी और पंडित भातखंडे जी जैसे संगीतज्ञों के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप पिछले 50 वर्षों से संगीत का शिक्षण विद्यालयों द्वारा ही दिया जाने लगा है। यह तो प्रायः सभी लोग जानते हैं। इसके पूर्व वेदाभ्यास के समान संगीत या ज्ञान गुरुमुखी ही था, जो कि गुरु के सानिध्य में या गुरुकुल में ही गुरु शिष्य परंपरा से ही प्राप्त होता था। इस पद्धति से सीखने में कई कई वर्ष लग जाते थे, किंतु विद्यालयों में संगीत के शिक्षण की व्यवस्था हो जाने से विद्यार्थियों को अनेक लाभ हुआ है। यह ज्ञान जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली में कठिनाई से मिलता था तथा समाज के कुछ वर्ग विशेष के लोग इससे लाभान्वित हो पाते थे, विद्यालयीन शिक्षण द्वारा जनसाधारण में इसका प्रचार एवं प्रसार हुआ। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि खानदानी व्यक्ति ही संगीतज्ञ हो सकता है। इस संकुचित विचारधारा को विद्यालय की संगीत शिक्षा ने मिथ्या सिद्ध कर दिया है। विद्यालयीन संगीत शिक्षण से भी कई संगीतज्ञ पैदा हुए हैं। कहा जाता है, इसके अलावा पहले विद्यार्थी को हर समय गुरु की रजामंदी पर आश्रित रहना पड़ता था, उसकी हर बात माननी पड़ती थी। यहाँ तक कि गुरु का खर्च पानी और घर का काम भी शिष्य को ही करना पड़ता था। गुरु की इच्छा से किसी दिन शिष्य को कुछ बता दिया तो शिष्य उसे महाप्रसाद समझकर अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता था। प्रायः गुरु के मस्तिष्क में यह युक्ति काम करती थी कि कहीं जल्दी जल्दी सिखा देने से उन्हें अपनी सेवा का अर्थ दोनों ही से वंचित न रहना पड़े, और यदि कहीं दुर्भाग्य से उन विद्यार्थियों के साथ गुरुपुत्र भी है तो हर तरह से यही कोशिश रहती थी कि उससे सभी विद्यार्थी कम ही रहें। इसी कारण गुरु शिष्य को धीरे धीरे समय लगाकर ही सिखाते थे, किंतु आधुनिक समय की नवीन शिक्षण प्रणाली यानी विद्यालयीन संगीत शिक्षण प्रणाली ने इस सभी परेशानियों को आसानी से दूर कर विद्यार्थियों के लिए अति सुगम मार्ग का उद्घाटन किया है। नियमित समय से नियमित पाठ्यक्रम व्यवसायिक रूप से तथा शुद्ध भाव से शिक्षक को अनिवार्य पढ़ाना ही पड़ता है। पाठ्यक्रम की समानता तथा विद्यालयों के सुगम्य और सुसभ्य वातावरण ने जहाँ एक ओर विद्यार्थियों में सद्भावना प्रेम प्रभूति सद्गुणों का सृजन किया, वहीं दूसरी ओर संगीत कला के प्रति समाज के विषाक्त दृष्टिकोण को भी विशुद्ध बनाने की कोशिश की है। कुछ संस्थाओं का विवरण यहाँ दिया जा रहा है जो वास्तव में संगीत के प्रचार प्रसार एवं उसकी सतत वृद्धि में सराहनीय कार्य कर रही हैं। पहला, गांधर्व महाविद्यालय। दूसरा, माधव संगीत महाविद्यालय ग्वालियर। तीसरा, श्री राम भारतीय कला केंद्र नई दिल्ली। चौथा, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद। पांचवा, भातखंडे विद्यापीठ लखनऊ। छठवां, प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़। सातवां, संगीत एवं ललित कला संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली। आठवां, इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। नौवां, विश्व भारती शांति निकेतन। दसवां, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कलकत्ता। ग्यारह, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। बारह, नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स बम्बई। चौदह, यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन म्यूजिक डॉस एवं ड्रामा बड़ौदा। पंद्रह, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला। सोलह, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। सत्रह, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। अठारह, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक। उन्नीस, SNTD महिला विश्वविद्यालय मुंबई। बीस, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। इक्कीस, संगीत रिसर्च अकादमी कलकत्ता। बाईस, संगीत नाटक अकादमी। तेईस, स्पिक मैके। चौबीस, संकल्प। पच्चीस, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी। छब्बीस, उमक सेंटर फॉर कल्चर दिल्ली। पेज नंबर 40, गांधर्व महाविद्यालय। 20वीं शताब्दी की शिक्षण संस्थाओं में गांधर्व महाविद्यालय का नाम प्रमुख है, जिसके संस्थापक स्वर्गीय पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर माने जाते हैं। संगीत से संबंधित इस विद्यालय की स्थापना पंडित दिगंबर जी ने उस समय की, जब समाज में संगीत की दशा बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। ऐसे समय में शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार एवं उसको समाज में उच्च स्थान दिलवाने हेतु पंडित दिगंबर जी ने युद्ध स्तर पर प्रयास प्रारंभ किए। इस कार्य में उनके शिष्य वर्ग ने भी सहयोग देकर संगीत सेवा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लाहौर शहर में 5 मई 1904 ईस्वी को गंधर्व महाविद्यालय की नींव रखी। 9 वर्ष के पाठ्यक्रम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पहले चरण में इसकी अवधि 4 वर्ष थी और संगीत प्रवेशिका कहते थे। दूसरा चरण 5 वर्ष का था। आखिर में जब छात्र पूरे 9 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा कर लेता था तो उसे संगीत प्रवीण कहा जाता था। शनय शनय संगीत का प्रचार बढ़ने लगा और कई शिक्षण संस्थाएं गांधर्व महाविद्यालय के नाम से स्थापित की गईं। सन 1908 में जगतगुरु शंकराचार्य जी के हाथों गांधर्व महाविद्यालय का उद्घाटन संपन्न हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बंबई का विद्यालय प्रमुख बन गया तथा लाहौर का विद्यालय शाखा हो गया। अन्य स्थानों में भी शाखाएं खुलने लगीं। 30 जून 1911 में श्री मनमोहन दास राम जी की अध्यक्षता में कालवा देवी रोड पर गोकुलदास मार्केट में तथा 7 जून 1912 की पूजा के बुधवार पेठ में गांधर्व महाविद्यालय की शाखाएं खोली गईं। इसी प्रकार 1913 में नागपुर में भी एक शाखा खोली गई। 1926 में गांधर्व महाविद्यालय का रजत समारोह स्वयं गुरुदेव ने कचारी में मनाया। 1942 में स्वर्ण महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसका अध्यक्ष स्थान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अलंकृत किया था। 21 अगस्त 1931 को गुरु पंडित विष्णु दिगंबर जी का मिरज में स्वर्गवास हो गया। इसी प्रकार 1931 में अहमदाबाद में गांधर्व महाविद्यालय की नींव रखी गई। इसके उपरांत भी देश के विभिन्न भागों में गांधर्व महाविद्यालयों की शाखाओं का खुलना निरंतर जारी रहा। गांधर्व महाविद्यालयों की स्थापना पंडित जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके कारण वे युग पुरुष कहलाए। गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना करने में उनका विशेष योगदान था। वह संगीत शिक्षक की प्रणाली को एक नया मोड़ देना चाहते थे। उसी समय जो शिक्षा दिए जाने का प्रावधान था, वह केवल गुरु शिष्य प्रणाली के अंतर्गत था। पेज नंबर 41, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अथक जनसाधारण को संगीत शिक्षा सुलभ नहीं थी। जिन संगीतकारों को राजाश्रय प्राप्त था, वे किसी को भी संगीत शिक्षा प्रदान करना अपना उत्तरदायित्व नहीं समझते थे। उनका ध्येय संगीत प्रदर्शन करने तथा अपने आश्रयदाता को खुश करना ही था, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ प्रतिभाओं का ह्रास हुआ। उस समय जो संस्थाएं थीं, जैसे गायन उत्तेजक समाज द्वारा चलाए गए वर्ग या बड़ौदा की एक शिक्षण संस्था थी, गुरु शिष्य परंपरा ही उसका अनुसरण करती थी। इन समस्त समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की गई। गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य केवल संगीत शिक्षा ही नहीं था, अपितु समाज में संगीत और संगीतकारों को मान सम्मान दिलवाना, संगीत में अभिरुचि पैदा करना और संगीत के स्तर को ऊपर उठाना भी था। पंडित दिगंबर जी के देहांत के उपरांत उनके अधूरे काम को उनके शिष्य वर्ग ने पूरा करने का दृढ़ संकल्प किया। सन 1931 में उनके शिष्य द्वारा अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना, उसमें संगीत शिक्षा का प्रावधान था, किंतु मंडल ने ऐसी किसी शिक्षा या शिक्षण संस्थान का निर्माण नहीं करने दिया। पंडित विष्णु दिगंबर जी ने अनेक शिष्यों तथा अन्य लोगों ने स्थापित संगीत संस्थाओं को मंडल से संलग्न करा लेने का उल्लेखनीय व प्रशंसनीय कार्य भी किया। मंडल का यह प्रयास संघटक रहा। पंडित पलुष्कर जी द्वारा स्थापित गांधर्व महाविद्यालय ने यहाँ शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार किया व संगीत के प्रति अभिरुचि पैदा की और संगीत विषय को प्रतिष्ठा दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहां अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल ने इन कार्यों का संवर्धन करने, संगीत संस्थाओं को एक सूत्रता में बांधने और संगीतकारों को एकीकृत करने का कार्य किया। दोनों में यही मुख्य अंतर है। मंडल के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला, मंडल का मूल उद्देश्य है भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देना तथा उनका प्रचार सभी शाखाओं पर करना। दूसरा, संस्थाओं को शुरू करना, संस्थाओं का प्रबंध करना और उनको जोड़ना। तीसरा, मंडल से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं उनको मान्यता दिलवाना, इसके अतिरिक्त उनके साथ सहयोग करना, नियंत्रण करना तथा उन संस्थाओं में उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करना जो स्वयं मंडल के उद्देश्य हैं। चौथा, संगीत की पढ़ाई के लिए न संस्थाओं के लिए पाठ्यक्रम बनाना, परीक्षाएं करवाना, योग्य व सफल विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान करना। पांचवा, अपनी किसी भी शाखा में संगीत विषय में विद्यार्थियों को शोध कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना। पेज नंबर 42। छठवां, पुस्तकें प्रकाशित करवाना, पेपर्स, पेफेंट्स, रिकॉर्ड्स, तस्वीरें, ड्राइंग्स, फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, लिटरेचर जो भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित हो उसको छपवाना, एकीकृत करना मुख्य कार्य हैं। सातवां, छात्रवृत्तियां, पारितोषिक, आर्थिक सहायता और किसी भी प्रकार की सहायता जिसके द्वारा विद्यार्थी पात्र हों प्रदान करना। जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में रुचि रखते हों ऐसे जरूरतमंदों की सहायता करना। आठवां, संगीत सभाओं का प्रबंधन करना, श्रोताओं की संख्याओं की ओर ध्यान देना, कार्यक्रम मिलकर आयोजन करना, संगीत संबंधी अनेक विषयों पर परिसंवाद करना, लेक डैम यानी लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन करवाना जिसके पीछे मूल उद्देश्य यही है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रचार अत्यधिक हो और इसका स्तर ऊंचा हो सके। इसके लिए संगीत सभाओं का प्रबंध करना जिसमें विशेषकर विद्यार्थी एवं संगीतकार भाग ले सकें। नौवां, मंडल की कार्य विधियों के लिए आर्थिक सहायता का प्रबंधन करना। दसवां, मंडल के सदस्यों और कार्यकर्ताओं को मंडल के नियमों की पालन करने के प्रति जागृत करना। ग्यारह, ऐसी गतिविधियों का संचालन करते रहना जिससे भारतीय शास्त्रीय संगीत का अधिक से अधिक प्रचार हो सके। आज गांधर्व महाविद्यालय एक वट वृक्ष की भांति देश विदेश में फैला हुआ है। गांधर्व महाविद्यालय मंडल की सफलता का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि प्रारंभ से लेकर विशारद, अलंकार एवं आचार्य स्तर की परीक्षा तक गांधर्व महाविद्यालय के लगभग 450 केंद्रों की ओर से लगभग 30,000 परीक्षाएं प्रतिवर्ष कराई जाती हैं। इतने भी विद्यार्थी इसमें परीक्षा देते हैं। इस संपूर्ण व्यवस्था में लगभग 2,000 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। मंडल के प्रशासन प्रकाशन विभाग द्वारा संगीतोपयोगी पुस्तकों का प्रकाशन तथा संगीत कला विहार पत्रिका का प्रकाशन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मंडल की ओर से त्रैवार्षिक अखिल भारतीय संगीत शिक्षक सम्मेलन का आयोजन, संगीत शिक्षकों की समस्याएं, विचार विनिमय, मार्गदर्शन, संगीत शिक्षा की गति मान्यता, शास्त्र और क्रिया में एक सूत्रता आदि लाने की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है।